पृष्ठ संख्या 212, अध्याय 24, घराने तथा बाज। घराना शब्द राजघराना के संदर्भ में सर्व सामान्य आदमी के लिए परिचित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना यानी सतारा के भोसले का घराना और कोल्हापुर का राजघराना यद्यपि सतारा की गद्दी से अलग हो तो भी वह शिवाजी महाराज के घराने के एक रूप है। राजघराने में नाते और परंपरा को वंशों एवं वंश वृद्धि के जरिए सुरक्षित रखा जाता है। घराना की संकल्पना मात्र राजघराने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह दिखाई देता है कि अन्य अनेक क्षेत्रों में भी इस संकल्पना को स्वीकार लिया गया है। परिवार की रीति रिवाज, परंपरा और खानदान को लेकर भी घराना शब्द रूट है। स्कूल्स ऑफ थॉट या डिसिप्लिन्स संज्ञाएं भी घराना संकल्पना से संबंधित हैं। कला के क्षेत्र में चित्रकला, शिल्पकला में अलग अलग शैलियों को भी प्रायः घराना के नाम से संबोधित किया जाता है। संगीत के क्षेत्र ने भी इस कल्पना को अपनाया है, जिसके फलस्वरूप शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य, सितार और तबला इन चार शाखाओं में अलग अलग घराने निर्माण हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हम घराना की संकल्पना का संगीत के संदर्भ में विचार करेंगे। घराने के संदर्भ में डॉक्टर मारुलकर कहते हैं कि एकाध असामान्य कर्तवी एवं सिद्ध कलाकार द्वारा आरंभ की हुई महान आचार विचार की परंपरा याने घराना है। कोई भी गुरु अपने निज के गुरु से प्राप्त संस्कारों, शिक्षा एवं कला प्रस्तुतिकरण की शैली तथा कला प्रस्तुतिकरण विषयक कला विचारों को आत्मसात करता है। उस प्रस्तुतिकरण के नियम, अनुशासन, परंपरा आदि सबको शिष्य अपने गुरु से ग्रहण करता है और यह सब वह अपने शिष्यों को प्रदान करता है। इस प्रकार परंपरा से चली आई हुई गुरु की यह विचार शैली एवं कला प्रस्तुतिकरण की शैली को ग्रहण कर उस कला को प्रस्तुत करने वाले शिष्यों एवं उनके शिष्यों का एक अलग वर्ग निर्माण होता है। ये शैलियां एवं परंपराएं पसंद आने वाले रसिक जनों का भी एक निराला वर्ग पैदा करता है। चहेतों का यह वर्ग उस शैली और परंपरा को बनाए रखने में पर्याप्त सहायता पहुंचाता है। कला क्षेत्र की इन परंपराओं को शैली या स्कूल कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्हें घराने कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 213। प्रतिभावान कलाकार घराने की इस विरासत को सुरक्षित रखने के क्रम में अपनी असामान्य निर्मिति क्षमता एवं नव सौंदर्य के दृष्टिकोण के फलस्वरूप परंपरागत संगीत से भिन्न एक अलग एवं सौंदर्यपूर्ण अभिनव शैली में अपनी कला प्रस्तुत करने लगता है। यह नवीन शैली, नया विचार अगर श्रोताओं को खूब पसंद आया और उसकी संतान और शिष्य इन विचारों को अगर प्रभावात्मकता के साथ पेश करने लगे तो हम यह कहने लगते हैं कि नए नए घराने ने जन्म लिया है। आचार विचार में नव सौंदर्य होने से यद्यपि एकाध कलाकार की नई शैली का उदय हुआ तो भी तुरंत उसे अलग घराना कहना गैर वाजिब है। यदि उस शैली को उस कलाकार की तीसरी पीढ़ी की संतान और शिष्यों ने आत्मसात करके प्रस्तुत किया और अगर श्रोताओं ने उसे पसंद किया तभी हम कह सकेंगे कि नए घराने ने जन्म लिया है और अच्छी तरह वह स्थिर हो गया है। घराना अनुवंश से और शिष्य परंपरा द्वारा जीवित रहता है तथा बढ़ता है। घराने का अधिकारी पुरुष यद्यपि कला के क्षेत्र में अधिकारी नहीं रहा फिर भी मुख्य अधिकारी के रूप में उसका सम्मान रखा जाता है। घराने के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं। पहला, घराना स्थापित होने के लिए संबंधित कला की शिक्षा और उसके प्रस्तुतीकरण में रत संगीतकार परिवार की कई पीढ़ियों के निर्माण होने की जरूरत होती है। ये पीढ़ियां रक्त वंश और या शिष्य वंश दोनों से संबद्ध होनी चाहिए। दूसरा, उस घराने का मूल पुरुष असामान्य प्रतिभावान कर्तव्यवान एवं व्यक्तित्व संपन्न हो। तीसरा, यदि वह घराना पुराना हो तो उसके वारिस का वर्तमान काल में मौजूद होना तो भाग्य की ही बात है, किंतु रक्त के वंशज के रूप में उस घराने का खलीफा जीवित न हो तो भी घराना नष्ट नहीं होता। समर्थ शिष्य वर्ग उसकी धुरा वहन करता ही है। चौथा, जब एकाध घराने के रक्त वंश एवं शिष्य वंश दोनों के वादक शेष नहीं रहते तब कहा जाता है कि वह घराना समाप्त हो चुका है, किंतु हो सकता है कि भविष्य में एकाध नवीन समर्थ कलाकार उस घराने का पुनर्जीवन कर दें। पांचवा, स्वतंत्र घराना निर्माण होने के लिए स्वतंत्र निकास पद्धति, स्वतंत्र विचार शैली एवं प्रस्तुतीकरण में अवलंब किए हुए अनुशासन की भी जरूरत होती है। छठवां, कला का स्वतंत्र रूप में प्रस्तुतीकरण करने वाले कलाकारों के घराने बन गए हैं। पृष्ठ संख्या 214, सात संगत करने वाले के घराने नहीं बने हैं। सातवां, वर्तमान तबले के घरानों का अध्ययन करने पर हमें दिखाई देता है कि प्रत्येक घराने के स्वतंत्र वैशिष्ट्य होते हैं। ये वैशिष्ट्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रत्येक घराने की स्वतंत्र वादन शैली होती है। इस वादन शैली का मतलब है तबले पर हाथ रखने की पद्धति, जिसे रखाव कहते हैं। ब, तबले पर उंगलियों से विशिष्ट क्रियाओं द्वारा विशिष्ट स्थान पर आघात करके खास नाद उत्पन्न करने का कौशल और रीतियां। क, बाएं पर विशिष्ट पद्धति से उंगलियों की सहायता से विविध नाद निर्माण करने की पद्धतियां। उपर्युक्त लक्षणों की ओर देखने पर हमें ज्ञात होगा कि ये सब शारीरिक क्रियाओं के लक्षण हैं जिन्हें बाज या वादन शैली कहकर संबोधित किया जाता है। जब हम घराने की रचना को प्रस्तुतीकरण के संबंध में बोलते हैं तब हमारा मतलब उक्त घराने के बाद से ही होता है। जब हम दिल्ली घराना कहते हैं तब दिल्ली बाज की संकल्पना उसमें अंतर्भूत होती है, किंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि घराना और बाज दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तबले का घराना यानी बाज प्लस और कुछ तथा यह और कुछ यानि क्या, इसका अगर हमने सूक्ष्मता से अध्ययन किया हो तो हमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक घराने की भिन्न भिन्न बौद्धिक वैचारिक क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं ही संबंधित घराने के आंतरिक लक्षण हैं। घरानों के इन आंतरिक लक्षणों का भी विचार करना आवश्यक है। विविध घरानों का तबला वादन समर्थ कलाकारों से सुनकर उनका अध्ययन करने पर घरानों के जो आंतरिक लक्षण दिख पड़ते हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक घराने के अपने खास वादन प्रकार होते हैं। दिल्ली अजराड़ा का प्रस्तुतिकरण विशेषतः पेशकार एवं कायदे के माध्यम से होता है, तो लखनऊ फर्रुखाबाद और बनारस घरानों का परंगत टुकड़ा बल स्थान है। दूसरा, सभी घराने यद्यपि सभी वादन प्रकार प्रस्तुत करते हैं, तो भी विस्तारक्षम रचनाओं के विस्तार में दिल्ली अजराड़े की एक अलग ही खासियत एवं अनुशासन महसूस होता है। तीसरा, दिल्ली अजराड़ा में चाट को तो पूरब घराने में लव को प्राधान्य होता है। चौथा, दिल्ली अजराड़ा की गतों पर कायदा और खाली भरी तत्वों का प्रभाव होता है। पृष्ठ संख्या 215। पांचवा, प्रत्येक घराने के बार बार उपयोग में लाए जाने वाले खास शब्द प्रयोग होते हैं। घराने की वंशावली की जानकारी परीक्षा के दृष्टि से आवश्यक है, अतः तबले के विद्यार्थी को उसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए, किंतु तबला वादन में उक्त वंशावली के ज्ञान का प्रत्यक्षतः लाभ अल्पशाही होता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह प्रत्येक घराने की वादन शैली का यानि उक्त घराने के विशिष्ट निकासों का समझ बूझ कर ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस शास्त्र शुद्ध निकास को अपने रियाज में लाए। इन विविध शैलियों की निर्मिति कैसे हुई इसका भी उसे अध्ययन करना चाहिए। उसी प्रकार इन विविध वादन प्रकारों में कौन से विशिष्ट विचार सूत्र छिपे हुए हैं इसका भी उनसे अध्ययन करना चाहिए। ऐसे विचार सूत्रों का परिचय प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना, उन पर रियाज करना और चिंतन करना आदि मार्गों से विद्यार्थी को अपनी वादन क्षमता बढ़ानी चाहिए। संक्षेप में, बाज अथवा वादन शैली का कानों और आँखों के माध्यम से आकलन किया जा सकता है, किंतु वादन के वैचारिक सूत्र, अनुशासन और भूमिका की पहचान सहेतुक प्रयत्नों से ही बुद्धि को हुआ करती है।